मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भजे अरुंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों से जिन बातों पर विचार किया है उन सब से हम वाकिफ हो चुके हैं, पर फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग हमारी उस पिछले दिनों की यात्रा में शामिल न हुए हों। हम अपनी उस विचार यात्रा में कितने आगे निकल आए हैं इस पर हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। हमने पिछले दिनों ये विचार किया है कि हमें अब समय रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बना लेना चाहिए। जो जीवन निकल गया वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो शेष है उसमें हमें क्या करना है ये हमें खुद तय करना चाहिए। कोई और हमारे जीवन के लिए निर्णय ले ये शायद जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हम स्वयं अपने जीवन के बारे में निर्णय लें तो हमारा जीवन अच्छा बने बिना नहीं रह सकता। अभी तक हमने दूसरों के द्वारा लिए गए अपने जीवन के बाबत निर्णयों पर बहुत बार कोशिश की है अमल करने की, लेकिन अपने जीवन का निर्णय हमें स्वयं लेना चाहिए। और हमने ये पिछले दिनों अनुभव किया है कि जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक हमारे सारे निर्णय हमें ऊंचा नहीं उठा पाए। जैसे हम निर्णय ले रहे हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे हम निर्णय ले रहे हैं कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे हम निर्णय ले रहे हैं कि भाई हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हमारे अपने जीवन के निर्णय हैं। लेकिन जब तक इन सब का एटीट्यूड क्या ये क्लियर नहीं है तब तक इन सब चीज़ों को, तो और भी बहुत से लोग हैं संसार में जो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं जिससे कि बात ना बिगड़ जाए, इसलिए नहीं करते हैं कि मेरा आत्मकल्याण मुझे करना। ये एटीट्यूड का डिफरेंस तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्लैरिटी ऑफ विजन जिसको कहते हैं, जिसको हम अपनी धर्म की उस सिद्धांत की भाषा में कहते हैं कि सम्यक दर्शन हमें होना चाहिए। हमें संसार शरीर और भोगों की जो वास्तविकता है उसका बोध होना चाहिए। हमें अपने आत्मा की वास्तविकता का भी बोध होना चाहिए और इस संसार की वास्तविकता, जगत और जीवन दोनों की वास्तविकता का। इसके बाद फिर हम जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वे हमारे निर्णय बिल्कुल परफेक्ट हों, वो हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। तो हमने पिछले दिनों ये कैसे मालूम पड़े कि संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम तो उन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में रहते भी हैं फिर भी हम नहीं जानते। देखिए, किसी भी चीज़ की वास्तविकता मालूम करनी हो तो बहुत तटस्थ होकर के उस चीज़ को देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम उन चीज़ों में रच पच के उनको ठीक ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज़ हमको बहुत प्यारी लगती है तो हम उसके बारे में फिर हम कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। हमारा राग से युक्त ज्ञान जो है वो हमें वास्तविकता को नहीं जानने देता। ज्ञान सबके पास है, लेकिन राग से युक्त ज्ञान वास्तविकता का कभी परिचय नहीं करा सकता। जैसे कि एक उदाहरण से अपन समझ लें कि जब अपन मार्केट में जाते हैं और अपने को पेन खरीदना है सपोज करिए, और फिर हम उस पेन वाले से पूछते हैं कि कौन कौन टाइप के पेन हैं, हम देखते हैं कि ये ऐसा है और इसकी निब तो ऐसी है, और या कि इसका ढक्कन का कलर ठीक नहीं है, या इसका पूरा पेन ही ठीक नहीं है, दुनिया भर की बातें, इसकी कंपनी ठीक नहीं है, और फिर डिसाइड कर लेते हैं ये बहुत अच्छा है, ले लिया। अब जब तक हम उसके सैकड़ों पेन देख रहे थे तब तक किसी पेन से हम अटैच नहीं थे, किसी में हमारा राग नहीं था, तो ये ऐसा है ये ऐसा है, ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अब मैंने पेमेंट कर दिया, ये पेन मेरा है, पॉकेट में रख के आ रहे हैं, मित्र रास्ते मिल जाता है, कहाँ गए थे, पेन खरीदा है, कैसा बताना ये, और ये कैसा वाला ले आए, हाँ रहने दो बढ़िया है मेरा, अब नहीं सुनना चाहते हम कैसा है रहे? नहीं, वो दुकानदार के यहाँ कह सकते थे कि ऐसा है या वैसा है, लेकिन अब हमारा ज्ञान रागान्वित हो गया है, वस्तु स्वरूप कैसा है इसको हम बिना किसी की मदद के नहीं समझ सकते। मदद करने वाले हमारे कौन हैं, संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता किनके चरणों में बैठ के मालूम की जा सकती है, किनके अनुभव से हम मालूम कर सकते हैं, जो तटस्थ है, जो हमारे जैसे रागी द्वेषी नहीं है, जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी और सर्वज्ञ हैं, या जो उनके बताए रास्ते पर चलने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त निर्ग्रंथ हैं, या कि वीतरागता का उपदेश करने वाली जिनवाणी जो भगवान की कही हुई है, इनके चरणों में बैठ करके ही हमको संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ेगी, और कोई नहीं है संसार में जो हमें वास्तविकता का बोध करा सके या हमें अपना आत्म ज्ञान करने में मदद कर सके। तो जैसे ही संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का बोध होता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, जिस तरह कहना हो, दोनों दोनों चीजें हैं, आप आत्मज्ञान कह लीजिए, आत्मज्ञान हो गया तो संसार शरीर भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ गई, संसार शरीर भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ गई तो वही तो आत्मज्ञान है, वो सब मेरे से पृथक है, मैं उससे जीव जुदा पुद्गल जुदा यह धर्म का। उस दिन फिर मालूम पड़ने लगता है कि जीव अलग है, और ये जो सारा संसार दिखाई पड़ रहा, सब पौद्गलिक जगत दिखाई पड़ रहा है, आत्म जगत को तो मैं अपने भीतर ही झांक करके देख सकता हूँ, आपके अंदर भी मैं झांक करके पुद्गल को ही देख सकता हूँ, आत्मा को नहीं देख सकता, मैं अनुभव अपने भीतर ही कर सकता हूँ उस आत्म तत्व का। ये बात जो है लग तो रहा होगा कि कठिन है, कठिन नहीं है, असल में दृष्टि निर्मल होने के बाद ये बिल्कुल आसान लगने लगती है, अभी कठिन लगेगी सुनने में पढ़ने में, फिर तो एकदम जब अपने भीतर ही क्लियर होने लगती है ये सब चीजें कि हाँ ऐसा ही। हमने पहले नंबर इसी बात पर जोर दिया है पिछले कई दिनों से कि हमें इस बात को ठीक ठीक समझ लेना है, अनुभव में ला लेना है कि हमारी दृष्टि कैसी है। जब वास्तविकता मालूम पड़ जाती है तो दृष्टि एकदम निर्मल हो जाती है। हाँ, दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए वास्तविकता हमारी मदद करती है। हमने पिछले दिनों एक उदाहरण से भी इस चीज को समझा था, हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से सुन लिया है वे भी रिवाइज कर लें, अच्छी चीजों को रिवाइज करना तो अच्छा ही है, अपन तो बहुत सी चीजों को रोज रोज रिवाइज कर रहे हैं, वही सुबह से उठ करके और वही पेस्ट और वही मंजन और वही चाय और वही सब कुछ, वो उसमें रिपीटिशन, उसमें जिस दिन रिपीटिशन लगने लगे उस दिन ऊब हो जाए। हाँ, लेकिन हमको वो रिपीटिशन लगते नहीं, हमको तो रोज नया लगता, रोज वही दाल रोटी बिल्कुल ऐसी लगती कि जैसे मैं पहली बार खा रहा हूं, मैंने जैसे खाई ही नहीं, जबकि अनादिकाल से वही करते आ रहे हैं। हमें इसमें बहुत जल्दी रिपीटिशन लगने लगता है कि ये सारी बातें तो आपने पहले भी कही थी, इससे कुछ आगे बढ़ो। नहीं भैया, एक किताब पढ़ रहा था मैं, यू कैन विन, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक इसमें से जो चीजें आपने पढ़ी हैं वे जीवन में नहीं आ जाए, जब तक आगे वाला चैप्टर मत पढ़ना। मुझे लगा कि ठीक कह रहे हैं, युधिष्ठिर वाली बात कह रहे हैं कि 6 महीने लग गए थे कि क्रोध नहीं करना, इस बात को याद करने में लग गए। हम लोगों को किसको यहां पर नहीं मालूम कि 5 पाप होते हैं और 4 कषायें होती हैं, रात 12 बजे भी किसी को अचानक जगा कि पूछ लो कषाय कितनी, कहेगा 4, 4 होती हैं, नाम गिनाओ, अब सोने दो, मालूम है मुझे क्रोध मान माया लोग तुम भी सो चार ही हैं। और हो सकता है कि अगर वो बार बार पूछे तो उसमें से एकाध कषाय भी जागृत हो जाए उसी समय, जो बता रहा है कि चार कषाय। मजा देखो अपन के साथ, अपनी जानकारी देखो। परफेक्शन तब इसीलिए आचार्यों ने लिखा हुआ है कि जानना जो कि राग वेश से युक्त है वो कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञान जो कि निरंतर हमारे भीतर वितरागता को बढ़ाता चला जाता है, वास्तव में आत्मज्ञान तो वही क्या है, हमें उसी का प्रयत्न करना। हम वास्तविकता का बोध जैसे ही हो जाता है वैसे ही उस आत्मज्ञान को हासिल कर लेते हैं, दृष्टि हमारी निर्मल हो जाती है, फिर हम जो भी करते हैं वो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाता है। हम आपसे बात कर रहे थे एक उदाहरण रिपीट करने की, बहुत छोटा सा उदाहरण है कि एक सेठ जी ने रास्ते से जा रहे थे रिक्शे में बैठे हुए और अचानक देखा कि बहुत भीड़ जुटी हुई है, तो देखा कि क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो एक्सीडेंट हो गया। तो दूर से उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा ही हो, और ऐसा जैसे उनके मन में आया तो उनको मूर्छा आ गई, वो गिर गए वहीं पर। उनके एक मित्र थे वो देख रहे थे उस भीड़ में कि ये क्या हुआ इनको अचानक, जाकर के टटोला देखा जहां ये गिरे थे वहां से उस घटना को, जैसे ही उस मित्र ने देखा तो उसको भी एक बार लगा कि सेठ जी का बेटा लग रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद समझ में आ गई कि सेठ जी की मूर्छा का कारण सिर्फ ये है कि उन्हें लग रहा है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अब क्या करना, अब सेठ जी को कितना ही भी समझाएं कि तुम्हारा बेटा नहीं है वो मानने तैयार नहीं होंगे। फौरन बेटे को फोन किया कि आ जाओ इस जगह पे, बेटा आ गया, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उनका बेटा नहीं था। बेटे को बुला के कहा कि जरा इनको जगाओ, उठाओ। मूर्छा टूटी सामने बेटे को देख करके तो बिल्कुल ही टूट गई, थोड़ी बहुत तो रही थी वो भी गायब हो गई। अच्छा तो किसका हुआ था एक्सीडेंट, वो किसी और का था। मूर्छा का कारण क्या था, भ्रम। मूर्छा का कारण क्या था, भ्रम। मेरा अपना बेटा है ऐसा भ्रम, मेरा अपना राग, दो ही चीजें तो है। हमारे लिए भी संसार में इसी तरह है, राग द्वेष हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, हमें वास्तविकता का बोध नहीं होने देते हैं। अगर जिसको हम आज अपना मित्र मानते हैं, अगर कोई अवधिज्ञानी मुनि महाराज बता देवे कि पूर्व जीवन में यह शत्रु था तो अपन चकित हो जाएंगे। हमारा राग फिर भी मानने तैयार नहीं होगा कि ये पूर्व जीवन में मेरा शत्रु था, आज तो इतना प्यारा मित्र है मेरा, कैसी बात कर रहे हैं। मेरा राग जो है उस वास्तविकता से मुझे विमुख करता है। हम सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए ये आलंबन लें, अपने राग द्वेष के चलते हुए भी वीतरागी के चरणों में बैठ करके उस वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास करें, तब धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी वही चीज आना शुरू होगी, तब हमारी दृष्टि निर्मल होगी। और दृष्टि निर्मल होने के बाद फिर हमने देखा था मोह तिमराभरणी दर्शन लाभार अवाप्त संज्ञान रागद्वेश निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते। जैसे ही मोह का अंधकार हटा आत्मज्ञान स्वतः हो गया, हाँ ऑटोमेटिकली। क्यों, अंधेरा हटने के बाद फिर जो जो चीजें रखी हुई थी कमरे में अंधेरे में जो दिखाई नहीं पड़ती थी उनको क्या मुझे और देखने के लिए कुछ और प्रयत्न करना पड़ेगा, वो तो अंधेरा दूर होते ही दिख गई, सब दिखने लगा। अरे वाह, आत्मज्ञान दृष्टि की निर्मलता होते ही हो जाता। मिथ्यात्व जैसे ही हटता है वैसे ही जितना भी ज्ञान था वो सब निर्मल हो जाता है। अब इसके बाद का परिश्रम थोड़ा सा करना जरूरी है। जैसे दृष्टि की निर्मलता के लिए हमने थोड़ा सा परिश्रम किया था क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग और करण, अपने परिणामों को सुधार करके अधःकरण अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण परिणाम में ढल करके, ये सारा प्रोसीजर अपने भीतर हो जाता है। दृष्टि की निर्मलता मैंने कहा तो मानिएगा, इतने प्रोसीजर से गुजर करके अपन आ गए तब जाकर के दृष्टि निर्मल हुई। अपन नहीं जान सकते हैं कि कब क्षयोपशम लब्धि हुई और कब वो विशुद्धि बढ़ गई और कब देशना के लिए कोई गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए और सानिध्य मिल गया सबका, और देशना भी पाली और फिर अंत कोड़ा कोड़ी सागर अपने 70 कोड़ा कोड़ी की मिथ्यात्व की स्थिति को भी हमने भीतर कर लिया, इतने में भी कोई विशेष फर्क नहीं होता। इसके बाद की प्रक्रिया भी मैंने संपन्न कर ली, दृष्टि निर्मल हो गई, आत्मज्ञान हो गया। अब परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, राग द्वेष घटावने का श्रद्धांत तो हो गया, राग द्वेष घटावने का ज्ञान सम्यक ज्ञान सो वो भी हो गया, लेकिन राग द्वेष घटावने की क्रिया सम्यक चारित्र है, सो अब मुझे अपनी क्रियाओं पर अंकुश रखना पड़ेगा। जिन क्रियाओं से मेरा राग द्वेष बढ़ता होवे वे क्रियाएं मुझे नहीं करनी है, जिन क्रियाओं से मेरा राग द्वेष घटता होवे वो क्रियाएं। बस भैया ये क्राइटेरिया है, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो, क्रिया कौन सी करनी है, क्रिया से तो विमुख हो ही नहीं सकते हैं। 24 घंटे क्रिया करनी पड़ती, वन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहती, उस प्रवृत्ति के बीच भी मुझे बार बार अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि चली जाए, निवृत्ति मेरा अपना स्वभाव है, प्रवृत्ति में तो राग द्वेष है, ये क्षण भर को भी अगर हमारे भीतर में आ जाए, भोजन बनाते हुए माँ के मन में ये आ जावे कि अब तो कोई भी नहीं है, मैं जरा भगवान का स्मरण तो कर लूं, दुकान पर बैठे व्यक्ति के मन में आ जावे कि कोई ग्राहक नहीं है, व्यर्थ संकलेश की जगह पर मैं जरा सा इस क्रिया से ब्रेक करके और हाथ पे हाथ रख के भगवान का स्मरण तो कर लूं, अगर ये चीज जीवन में आ जावे, राग द्वेष के प्रपंच के बीच भी बीत राग का बार बार हिलोर मारे, तो समझना कि अब दृष्टि की निर्मलता के लिए अब स्वाद आने लगा। इतना ही सा काम, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं बता रहा हूं, बहुत आसान काम है, वो सारे सबके बीच में भी क्षण भर को हम चाहें तो डिटैच हो सकते हैं सारे अटैचमेंट के बावजूद, यदि दृष्टि निर्मल। हाँ, ये बहुत जरूरी, एडॉप्टेड नहीं, बाहर से लिया हुआ नहीं, आपके भीतर पूर्ण जनरेट होना चाहिए, आपके भीतर स्वयं ये बात आनी चाहिए कि हाँ ठीक तो है, बहुत कर लिया, कहां तक करते रहेंगे, 24 घंटे नहीं भाई, विश्राम लेता हूं, प्रपंच से विश्राम लेता हूं, इसलिए प्रपंच शब्द लिखा, संसार को प्रपंच का, उससे विश्राम लेता हूं। इस तरह यदि हमारे मन में अपनी क्रियाओं के प्रति सावधानी और सजगता आ जावे तो हम उन क्रियाओं से बच सकते हैं जो हमारे संसार बढ़ाने वाली हैं, उसी का नाम तो चारित्र है। और कोई चारित्र कोई बहुत बड़ी त्याग और तपस्या और चारित्र और संयम, ये शब्द सुनकर के अपने मन में तो एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि भैया ये अपने बस का नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जितना आसान ये है उतनी और कोई चीज नहीं है, लेकिन कब, जबकि दृष्टि निर्मल हो जाए तो आसान आसान है, और नहीं तो कठिन तो है ही, फिर तो किसी के कहने से करेंगे सो बामुश्किल दिन काटेंगे गिन गिन करके, कोई भी चीज करेंगे सो, और अगर अपने मन से कर रहे हैं तो एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा, क्या साल क्या दो साल क्या पांच साल, अब तो उस तरफ मन ही नहीं जाता जिसको कल तक छोड़ नहीं पा रहे थे, कैसी स्थिति बन जाएगी आप आश्चर्य करेंगे कि जिन चीजों को छोड़ना मुश्किल था एक स्थिति में उन चीजों को करना मुश्किल हो जाए, जिन पापों को एक दिन छोड़ने की मुश्किल पड़ती थी उन पापों को एक दिन करना मुश्किल हो जाएगा, वो चारित्र की उतनी निर्मल अवस्था हमारा प्राप्तव्य वही है, हमें पहुंचना वहीं तक है, चाहे हम पूजा करें चाहे हम स्वाध्याय करें और चाहे व्रत नियम का पालन करें, उन सब के पीछे हमारा उद्देश्य एक ही है कि आज मैंने ठाट बाट से भगवान की पूजा करी तो मेरा राग द्वेष घटा कि नहीं घटा, मेरे भीतर वितरागता आई कि नहीं आई, मुझे संसार शरीर और भोगों से उदासीनता हुई है या नहीं हुई है, या कि मैं उनमें उतना ही रचपच जाता हूं यहां से जाने के बाद, ये सोच करके कि घंटा भर तो अपनों खराब हो गो, अब अच्छे से करो जो सब संसार को काम, कहीं ऐसा तो नहीं, इतना भर सावधानी रखो, ये लगे यहां से निकलने के बाद की ऐसा अवसर घंटे भर का और मिल जाता, मैं क्या करूं अपने संसार के दायित्व को जल्दी से घटा करके इसके लिए समय निकाल लूं, ये ललक भीतर जागृत हो जावे, उन क्रियाओं के प्रति जिन क्रियाओं से वितरागता आती है तो अपने आप जिन क्रियाओं से राग द्वेष बढ़ता है उनसे विमुक्ता हो ही जाएगी, भीतर संतोष होवे श्रावक के तो सारा काम बन गया, और भीतर समता हो वे साधु के तो साधुता सद गई, बाकी सब चीजें साधने की आवश्यकता नहीं। श्रावक के जीवन में संतोष सद गया और साधु के जीवन में समता सद गई तो चारित्र आ गया। और ये दोनों चीजें नहीं सदती हैं तो बाह्य चारित्र बहुत सारा भी आ जावे तो कुछ नहीं होने। विचार कर लेना इस चीज का बहुत अच्छे से, बहुत गौर से अपने जीवन में झांक करके अपने अनुभव से। हमारी ये बात हमने आपसे कह दी, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखना। हमारे गृहस्थी में अगर संतोष है तो बताइएगा क्या हमसे पाप हो सकते हैं? जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, हमें अपने जीवन में थोड़ा सा चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? जितना उद्यम करना सो कर्तव्य मान के कर लिया, काय को प्रपंच में पड़ेगा कोई। और जिसके भीतर समता आ गई है उसके भीतर साधुता 28 मूल गुण का पालन करने से आती हो तो आती हो, वास्तव में तो साधुता समता से आती है। और भीतर समता न हो गए, आचार्य भगवंत ने, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा हुआ है कि मासोपवास करना और मौन धरना और बहुत सी लाइनें हैं, और वनवास में रहना, ये सब व्यर्थ हैं श्रमण के बिन साम्य वाना। अगर समता परिणाम ना हो तो ये सब तो कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। इसी तरह श्रावक के जीवन में भी अगर वो आंशिक रूप से बाह्य में पापों का त्याग कर भी देवे और संतोष ने आवे, परिग्रह का परिमाण कर लिया लेकिन इच्छाओं का परिमाण नहीं कर पाए तो क्या होगा? थोड़े से परिग्रह को रख करके भी ग्रद्धता आ जाएगी। हमने देखा है, अनुभव करके देखा है, पहले 10 चीजें खाते थे सो ज्यादा ध्यान नहीं रहता था कि जी हाँ ठीक है, ये भी खा लो, ये भी। जोन दिन से सोची है कि दो ही खाएं सो उन दो ही में इतनी लो लुटता है क्योंकि अब और कुछ है ही नहीं। ऐसा ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 खाने लगो, मैं ये कह रहा हूं कि 2 इसलिए रखी है मैंने कि अपनी लो लुटता कम करने के लिए। ऐसा ना हो कि मैंने आज उपवास किया है तो कल मेरे भोजन में लोलुपता और ज्यादा बढ़ जाए। नहीं, आज मैंने उपवास इसलिए किया है कि ये जो लोलुपता मुझे रोज रोज खाने की है वो घटनी चाहिए। भाई क्राइटेरिया इसलिए पहले फिक्स कर ले। क्राइटेरिया एक ही है, मकसद एक ही है कि मेरे मूर्छा टूटे, मेरे राग द्वेष घटे, मेरे वीतराग स्वभाव की तरफ मेरा प्रस्थान हो निरंतर, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो। श्रावक तो सोचता है कि जो कुछ भी करना है, बड़ी बड़ी चीजें भी सब महाराज के जिम्मे हैं, वे ही करें, अपन कुछ नहीं करना। अपन तो अज्ञानी, थोड़ी गलती हो जाती श्रावक से तो फौरन एक ही वाक्य है, क्षमा करना, अज्ञानी है। तो जी अज्ञानता भी आपके लिए क्षम नहीं है, उन क्षुद्र जीवों के लिए उनकी अज्ञानता क्षम है, हम और आपके लिए अज्ञानता क्षम नहीं है। असंगी पंचेंद्री तक एक इंद्री से लेकर के अज्ञानी ही है, उनकी अज्ञानता क्षम है, लेकिन संगी पंचेंद्री नारकी की अज्ञानता और देवों की अज्ञानता भी क्षम हो सकती, तिरंज की भी क्षम हो सकती, मनुष्य की अज्ञानता क्षम नहीं है, ये ध्यान। इसलिए ये बहाना कि हम तो अज्ञानी हैं, आपको मालूम कर्म बंध में सबसे बड़ा कारण कौन सा है? अज्ञानता। क्यों नहीं आपने ज्ञान हासिल किया जबकि ज्ञान स्वभाव ही आप स्वयं हैं? आपने अपने राग द्वेष के चलते अपने ज्ञान को ढक लिया है, ये आपकी अज्ञानता, आपका स्वयं का अपराध है, किसी और का। इस अपराध की हम स्वीकृति करें, हम स्वीकार करें कि हाँ ये अपराध हमारा ही। क्यों हमने अपने राग द्वेष बढ़ा करके अपने उस आत्मज्ञान को ढक लिया और हम आज कह रहे हैं कि अज्ञानी नहीं। इसलिए श्रावक और साधु दोनों के लिए एक ही चीज ध्यान में रखने की है, अगर श्रावक है तो संतोष है, साधु है तो समता है। यहां से शुरू करें अपन चारित्र, और फिर तो षटकर्माणि दिने दिने दान पूजा सील उपवासो चौभ्यो साव्यानम धम्मो और ज्ञान अध्ययन तपो रक्ता तपस्वी सह प्रशस्यते, ऐसी बहुत सारी फिट, और उनको एलाबोरेट किया है, उसी चीज को एलाबोरेट किया, बहुत विस्तार दिया है कि भैया अगर एक चीज से समझ में नहीं आता संतोष कैसे प्राप्त करें, तो संतोष कैसे प्राप्त करें तो दान और पूजा करो, संतोष रहेगा। संतोषी आदमी कर सकता दान पूजा और को कर सकता? असंतोषी आदमी दान पूजा करेगा तो मांग के जाएगा यहां से, पूजा थोड़ी करेगा, वो तो इन्वेस्ट करेगा। अगर असंतोष मन में है तो पूजा नहीं करेगा, वो पूजा करके भी और अपने अपने असंतोष की पुष्टि के लिए हाथ फैलाएगा, पूजा नहीं कहलाएगी। दान भी करेगा तो वो इसलिए करेगा कि इस पट्टी पर हमारा नाम लिख जाएगा 1000 में, कब रहो। जैसे 1000 रुपए में सामान खरीदने जाते हैं, वो डोनेशन थोड़ी कहलाता। डोनेशन कह रहा था कि मैंने आपको 1000 दिया, आपने मुझे कोई सामान दे दिया 1000 की कीमत का, ऐसे ही मैंने 1000 दिए, मेरे आधे पिलर पे नाम लिख दिया, खत्म बात। यहां है इस मंदिर में कि कहीं नाम नहीं लिखा, सौभाग्य नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक आध टेबल वेबल पे लिखा रहता है, लिखा रहता है। बाद में आने वाले लोग लिखवाने लगे हैं, पुराने लोगों को ऐसा नहीं था। तो दान और पूजा ये शावक के लिए संतोष को बढ़ाने की प्रक्रियाएं हैं, और ज्ञान और ध्यान साधु के लिए समता बढ़ाने की चीजें हैं दोनों। और अगर समता आ गई तो ज्ञान ध्यान है, और अगर संतोष आ गया तो दान पूजा है। ऐसा कह लो, कहीं से भी शुरू करो, संतोष से शुरू करो तो दान पूजा पे आओ, और दान पूजा से शुरू करो तो अल्टीमेटली क्राइटेरिया संतोष ही होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूं और बात पूरी कर लूं, मेरे ख्याल से मेरा समय भी हो गया। नहीं, इसको तो इतना पर्याप्त है, फिर बैठेंगे अपन, फिर बात करें, थोड़ी थोड़ी बात करो, वह सारी डाइजेस्ट नहीं होती, वो फिर वो रखी रहती है इनके। हम कितनी सारी बातें कर चुके आपसे, लेकिन आपने, आप जहां के था, नहीं ऐसा तो नहीं, जहां के था थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं सुधार लेता हूं। आपने थोड़ा सा तो भीतर परिवर्तन तो किया, मुझे इतना तो विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, आपके ऊपर तो विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने जो कहा है वो खाली नहीं है, मुझे ये विश्वास। और आपने अगर गौर से सुना है तो आपके लिए वो खाली नहीं जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे विश्वास है कि जीवन के अंत में भी कभी ना कभी ये बात याद आ जाएगी कि एक आदमी ऐसा आया था जिसने कि मुझे अपने जीवन के कल्याण के लिए ये बात कही। आज ये बात बहुत जरूरी हो गई, मुझे उस पर विचार करना चाहिए, रहेगी, जाएगी नहीं, कहीं नष्ट नहीं होगी। अगर आपने पूरे मनोयोग से सुना है और मैंने पूरी ईमानदारी से आपसे कहा, खाली तो नहीं जाए, चेंजेस होंगे। लेकिन हम लोगों का संस्कार इतना प्रबल है कि चेंजेस एट द मोमेंट तुरंत दिखते नहीं है उस संस्कार की प्रबलता से, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि इस गर्टर को भी अगर सरकंडे की हथौड़ी से भी इस गर्टर पर हैमरिंग की जाए, इसको तोड़ा जाए, तो ठीक है टाइम बहुत लगेगा, लेकिन चोट निरंतर पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जिस चीज को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, जिन संस्कारों को तोड़ना चाह रहे हैं, जिस असंतोष के और जिस राग द्वेष के संस्कार को तोड़ना चाह रहे हैं, वो टूटे नहीं। हम निरंतर उस प्रक्रिया को करते चले जाएं तो वो प्रक्रिया हमें एक दिन जरूर अपने रिजल्ट्स देगी। एक छोटी सी घटना आपसे कहूं, दान पूजा पर अपन बैठेंगे, विचार करेंगे, डिटेल में विचार करेंगे, पर अभी पहले मेरा मन ये है कि पहले फाउंडेशन, क्योंकि दान पूजा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, जब तक कि हमें क्यों करना है ये हमारे भीतर क्लियर ना हो जाए, बहुत भीतर पुख्ता ये बात आ गया, जब भी दान देने का मन हो तो भीतर से हो, दान दे मन हरक विषय को, इतना आनंदित हो उठे मन कि अब तो रोका नहीं जाता देने से, अब तो देऊंगा ही, अब तो रुकते ही नहीं पैर घर में, मैं जाऊंगा ही, सुबह हो गई पूजा के लिए, नहीं अब टाइम हो गया पूजा का, अब ये पूजा करनी हमारे लिए रोज का काम है, वो आए थे एक महाराज वो नियम दिला गए थे, चलो चलते हैं अब, आज तो हम जल्दी करके आ जाएंगे भाई, हम 15-20 मिनट से ज्यादा हमारे पास बहुत व्यस्त हैं आज, ऐसे तो अपन ने कई बार करी पूजा, 15 मिनट नहीं कहो, घंटे भर करी हो मजबूरी में, ऐसे की बात नहीं कह रहा, दान भी करोड़ों रुपए का दिया होगा, लेकिन एक पैसा भी दिया है और इतने उत्साह और इतने मन से दिया है कि वो हमारे जीवन को वितरागता की तरफ ले जाने के लिए कारण बन गया। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, असल में कब ये छोटी मोटी हो जाती हैं, जब हम इनको ठीक ढंग से नहीं करते, ठीक परिणामों से नहीं करते, तब इनके कोई बेनिफिट नहीं दिखते। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में संतोष आ गया, इसके लिए हमने दान पूजा रखा है, तो पहले संतोष समझ ले कि संतोष क्या चीज होती है, छोटे छोटे से उदाहरण से, और समता क्या चीज होती है इसको भी छोटे से, ताकि जल्दी समझ में आ जाए, दृष्टांत से समझ में आ जाता है कि कभी अपने जीवन में ऐसा घटित हो तो हमें क्या करना चाहिए। एक सुकरात के जीवन का उदाहरण है, तो सज्जन पुरुष है अपन ये मान के चले, एक सज्जन पुरुष है, उसका नाम सुकरात है सपोज करिए, और उसकी सज्जनता क्या, उसका संतोष उसकी सज्जनता, और वो भगवान की भक्ति पूजा, भगवान की भक्ति पूजा में अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है, और भीतर उसने अपनी जीवन साथी से बोल दिया है कि सुनो चाय दे जाना, हम लोग भजन कर रहे हैं, भजन पूरा होने पर, भजन में लग गई देर, अब वो चाय बन के तैयार है, जीवन साथी खड़ी नहीं है, लेकिन सब अपने भजन में मशगूल है, ध्यान ही नहीं, तो ठंडी ना हो जाए तो इनको कैसे ध्यान आए, तो सिर पर से शुरू कर दी डालना। हाँ, जैसे इनके सिर पर से डाली, एक तरफ से बही वो गरम गरम लगा, तो इनकी पूजा भक्ति में थोड़ा व्यवधान आया, तो देखा क्या बात है, लेकिन तब तक तो आधा चेहरा जल चुका, बाकी मित्र हड़बड़ा गए, लेकिन इनके चेहरे की प्रसन्नता ज्यों की त्यों, अरे जैसे कुछ भी ना हुआ हो, पूछा कि अरे आधा चेहरा जल गया, कोई कष्ट नहीं है, बोले मैं तो ये सोच रहा हूं कि पूरा जल जाता तो क्या होता, आधा तो बचा हुआ है, मुझे खराब नहीं होने देना है, बाह्य निमित्त मिलने पर भी अगर मेरे भीतर संतोष आ गया है तो ये हमारे जीवन में एक अपने आप आने वाली गुणवत्ता है, जो जितना संतोषी होगा वो विपरीतताओं के बीच भी अपने परिणाम नहीं बिगड़ने, क्योंकि उसने एक बार स्वाद जान लिया है अपनी परिणामों की निर्बलता। लेकिन बहुत कठिन है भैया, विपरीतताओं में भी और हमारे परिणाम ना बिगड़े, ये हमारी अपनी बहुत मेहनत से ही हम इसको अर्जित कर सकते हैं। और एक उदाहरण ऐसा जिसमें कि समता और संतोष दोनों समझ में आ जावे। संतोष तो अपन सब लोग कोई भी उदाहरण दे देता कि आधा ग्लास भरा कि आधा खाली, यही तो है, और क्या क्या देखना आपको, आधे आधे में पानी भरा हुआ है तो आधा खाली है ये देख लो, या कि भरा हुआ है ये देख लो, ये तो बहुत आसान है। एक उदाहरण और है, एक युवक आता है साधु के पास कि महाराज मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि कहां जाऊं, मतलब दो ही रास्ते हैं, एक तो श्रावक का है, गृहस्थी का है, और एक साधु का है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, अब टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का कि मैं क्या करूं, मैं साधु बन जाऊं। हम लोगों के जीवन में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें से एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये अंतर द्वंद है जीवन में हमेशा चलता रहता है। पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे हैं, दो चीजें हैं एक साथ करने का मन है, लेकिन एक बार में एक ही कर पाएंगे, लेकिन करने का मन है दो चीजों को एक साथ, जैसे कि एक फिल्म लगी हुई है और उसका एक ही शो बाकी बचा है, और अब क्या करेंगे, दोनों तो एक साथ देख ही नहीं जा सकती, तो क्या करो फिर, टॉस करो, कोई एक देख पाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत आसानी है कि दो में से एक चूज कर लो, क्योंकि एट ए मूवमेंट दोनों नहीं मिल सकती। नेगेटिव नेगेटिव में बच्चे लोग ऐसा बहुत करते हैं, फेल भी ना होना पड़े और पढ़ना भी ना पड़े, दोनों ही नेगेटिव, देखो मजा, तो आप इसमें से कोई एक स्वीकार कर लिया, तो फेल होना स्वीकार कर लिया, पढ़ना स्वीकार कर लिया, ये नेगेटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, संसार के सुख भी ने छूटे और बाबा जी कह जावे, आया समझ में, जल्दी समझ में आ जाए, साधु भी लोग समझे मुझे और मेरे संसार के भोग विलास भी ना सूझे, ये बहुत जरूरी आता अपने मन में, ये पॉजिटिव नेगेटिव, शायद उस युवक के मन में भी यही था कि श्रावक बनूं या कि साधु बन जाऊं। महत्वपूर्ण दोनों चीजें नहीं है, न ग्रहण महत्वपूर्ण है न त्याग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उसका परिणाम है। जिस ग्रहण में संसार बढ़ता हो वो ग्रहण भी व्यर्थ है, और जिस त्याग से संक्लेश बढ़ता हो वो त्याग भी व्यर्थ, परिणाम श्रावक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप क्यों बनना चाह रहे हैं, गृहस्थ क्यों बनना चाह रहे हैं, भोग विलास के लिए बनना चाह रहे हैं या कि संसार से पार होने के लिए, गृहस्थ भी संसार से पार होता है ध्यान रखना, ठीक है थोड़ी देर लगती है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, और साधु भी बनता है, लेकिन क्यों बन रहे हैं आप साधु, ये आपको पहले विचार करना पड़ेगा। जरा आसानी रहेगी, खूब प्रशंसा मिलेगी, लोग चरणों में डले रहेंगे, इसलिए बन रहे हैं? नहीं, इसलिए दोनों बनना महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों का परिणाम महत्वपूर्ण है। अब साधु बाबा जी उसको कैसे समझाएं? उसने कहा देख मेरे साथ चल तू दिन भर और देख स्वयं निर्णय लेना है तेरे को। अपने जीवन के निर्णय हमें स्वयं लेना चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बुरा बना, जब हम बुरा बनाने की निर्णय अपने हाथ से लेते हैं तो अच्छा बनाने के लिए क्यों दूसरे के चरणों में जाते हैं कि हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाह रहे हैं? आपने बुरा बनाया था तब हमसे पूछा था क्या? आपने पाप करने से पहले मेरे से पूछा था, फिर पाप से बचने का उपाय मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप क्यों खुद नहीं डिसीजन ले रहे? बात अपन बात कर रहे हैं, आप मैंने ये नहीं समझना कि मैं आपको कोई उलाहना दे रहा हूं या क्या कह रहा हूं, अपन बात कर रहे हैं जैसे अपन बात कर रहे हैं। तो अपने अपन को विचार करना चाहिए, अशांति के उपाय तो हम करें और शांति का उपाय दूसरे से किसी बाबा जी से पूछने जाएंगे। शांति का उपाय बताओ, आप पहले ये बताओ कि आपने ये अशांति के उपाय अपनाए क्यों? शांति तो हमारा स्वभाव है, अशांति के उपाय हमने खुद अपनाए हैं, दूसरा कौन बताएगा हमें शांति के उपाय? ठीक ऐसे ही निर्णय तुम्हें करना है। मैं तुम्हें उदाहरण समझा देता हूं। गए वो एक फैमिली में गए और जाकर के बैठ गए कि देखो क्या कर रहा था वो पुरुष, बाहर सूत काट रहा है, दिन के 12 बजे सूत काट रहा है, प्रसन्न है। और बाबा जी कहते हैं कि भैया मैं इस युवक को लाया हूं, ये डिसाइड करना चाह रहा है कि गृहस्थ बने कि साधु। तो वो कहता कि हां बैठो, और फिर भीतर आवाज देता है कह रहे सुनती हो थोड़ा एक दीपक तो जला के रख दो। ला करके भीतर से आवाज 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 कुछ नहीं, क्यों रखना है, क्या जरूरत है इतने उजाले में, कुछ नहीं, दीपक जला के रखना है। धीरे से ला करके बाजू में दीपक जला के रख दिया। साधु ने युवक से कहा कि चले आओ, देखा, देख लिया, इतना ही देखना पर्याप्त था, मैसेज पूरा मिल गया, गृहस्थी देख ली आपने। अब चलते हैं अपन, एक टेकरी के नीचे पहुंच के आवाज दी, बाबा जी हो क्या? आता हूं आता हूं। और बाबा जी ने उतरना शुरू किया। ऊपर की झोपड़ी में टेकरी पर बाबा जी रहते हैं, नीचे आए और जो नीचे साधु बाबा जी खड़े थे युवक को दिए, इस युवक के लिए आया हूं लेकर के, ये निर्णय लेना चाहता है कि श्रावक बने कि साधु बने। बाबा जी आपको कितना समय हो गया साधु बन करके, उम्र कितनी हो गई? मेरी तो 94 साल। अच्छा ठीक, और तो नहीं पूछना बेटे कुछ? कुछ नहीं पूछना। बाबा जी ने फिर ऊपर ऊपर तक पहुंचे पहुंचे नहीं, नीचे से फिर जो ये बाबा जी उस युवक को लेके आए थे साधु जी, अरे सुनो तो बाबा जी सुनो। बाबा जी ने कहा आता हूं आता हूं। फिर से बाबा जी 94 साल के बाबा जी फिर से लौट करके नीचे आए, उतनी प्रसन्नता, उतनी ही उत्साह, उमंग। बाबा जी मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि आप इस टेकरी पर कितने दिनों से रह रहे हैं। अरे जब मैं 12-13 वर्ष का था तब से ही आ गया था घर से, तब से यहीं रहता हूं। अच्छा बाबा जी, बाबा जी फिर चढ़ गए ऊपर और इतने में फिर से नीचे से आवाज देता है कि एक बात और बाबा जी। बाबा जी कहते हाँ आता हूँ आता हूँ। और फिर इतने उतनी प्रसन्नता उतने उत्साह से फिर नीचे उतर के आ रहे हैं। पूछ बेटे क्या पूछना है? कुछ नहीं बाबा जी, आप इतनी उम्र में भी इतने स्वस्थ कैसे हैं, इतने प्रसन्न कैसे हैं? बेटे मेरी प्रसन्नता यही है कि मैंने कभी भी कंपेयर नहीं किया दो चीजों में, मैं जैसा हूं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे निरंतर और अधिक ऊंचे उठना है, यही विचार है मेरा। ठीक है बाबा जी ठीक है। उनको सुनना उनना थोड़ी था उत्तर, उनको तो सिर्फ नीचे बुलाना था बाबा जी। और बाबा जी फिर से ऊपर चढ़ गए, युवक से कहा कि देखा साधु, देख लिया, अब निर्णय तो तुम स्वयं कर लो। गृहस्थ बनना हो तो ठीक वैसे बनना कि 12 बजे दिन को भी जिसने अपने घर में आवाज दी है तो बिना किसी मीन मेष के और सहजता से, ना अपने परिणाम खराब किए ना दूसरे के होने दिए, बताइए आप, नहीं तो जरा सी बात में 12 बजे दिन में दीपक क्या मतलब है जलवाने का? अपने परिणाम बिगाड़े और ऐसा कह करके जिसने मंगाया है उसके परिणाम बिगाड़े। गृहस्थी में ऐसे सैकड़ों अवसर हैं परिणाम बिगाड़ने के, लेकिन आपने जैसा कहा मैंने कर दिया, मुझे कोई अपने मन खराब करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको सहज ऐसा अगर गृहस्थी में हो कर सको तो गृहस्थ बन जाना, और सैकड़ों दफे भी कोई तुम्हें परेशान करने के उपाय करे तब भी अपनी समता नहीं छोड़ना। अगर ऐसा कर सको तो साधु बन जाना, हमें आपसे कुछ नहीं कहना, आपको जैसा कहना हो वैसा करना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।